हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नैना जब वापस आई तो अक्षत घर पर नहीं था, इसलिए अजय भी उसके साथ घर में नहीं आया। नैना को घर के बाहर ही ड्रॉप करके अजय सीधा अक्षत के पास चला गया। नैना अपनी आउटडोर शूटिंग को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो हॉल के सोफे पर बैठी ही थी कि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन टोन बज गया। उसने अपना मोबाइल चेक किया, असिस्टेंट ने मेल कर दिया था। मूवी में उसका रोल सेकंड फीमेल लीड का था। नैना बहुत खुश हुई। उसे पहली बार में ही कोई साइड या सपोर्टिंग रोल नहीं मिला था, बल्कि सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था। नैना ने अपना मोबाइल फोन निकाला। वो अक्षत से बात करने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट का मेल देखकर इतनी उत्साहित हो गई कि जल्दी से मेल खोलकर स्क्रिप्ट देखने लगी। चेक करते हुए वो कब शुरुआती पेज पढ़ने लगी, उसे अक्षत का ध्यान ही नहीं रहा। नैना ने मेड से कॉफ़ी बनवाने को कहा। कुछ देर बाद मेड ने उसे कॉफ़ी दी, लेकिन नैना ने कॉफ़ी भी नहीं पी। उसी तरह स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वो वहीं सोफे पर सो गई। उसके हाथ में अभी भी मोबाइल फ़ोन था, जो सोते हुए उसकी पकड़ से छूटकर उसकी गोद में गिर गया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट लगी, लेकिन उसने आंख नहीं खोली और उसी तरह लेटी रही। वो बहुत थक गई थी। तभी उसे अपने बालों के बीच किसी के हाथों की उंगलियां महसूस हुईं। नैना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि अक्षत है। उसने सोते हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर अक्षत का हाथ पकड़ लिया। अक्षत ने हल्का सा झुककर नैना के हाथों पर किस किया। अक्षत, तुम आ गए, क्या टाइम हो रहा है, मैं कितनी देर से सो रही हूँ। इतना बोलते हुए नैना जम्हाई लेती हुई उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली थी, लेकिन वो अक्षत की तरफ देखकर आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी आ गया। जब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, तुम्हारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और तुम अगले हफ्ते शूटिंग के लिए चली जाओगी, तो मैंने सोचा जितना टाइम है हम साथ में बिताते हैं। अक्षत नैना के बराबर बैठकर उसके हाथों के इर्द-गिर्द अपनी बाहें लपेटते हुए बोला। ये बात बोलते हुए अक्षत थोड़ा उदास लग रहा था। नैना ने उसकी बातों में ही उसकी मायूसी महसूस कर ली। उसकी नींद एकदम गायब हो गई। पूरी तरह से आंखें खोलकर वो अक्षत के एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए बोली, अरे तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, जब गुड न्यूज़ है ये सड़ा हुआ सा मुँह क्यों बनाया है। नैना ने बहुत प्यार से अक्षत की नाक को छूते हुए कहा। इससे अक्षत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो फिर से गायब हो गई। अक्षत उदास होते हुए बोला, यार तुम चली जाओगी अगले हफ्ते, तो फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मेरी मूवी की भी शूटिंग है, तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ सकता। अरे तो फिर अकेले कहाँ होगे, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी मूवी की भी शूटिंग है, तो तुम भी तो उसमें बिजी रहोगे। नैना ने अक्षत के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा और उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। वो अपने रिश्ते की शुरुआत में अक्षत से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि जाना पड़ेगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अक्षत भी ये बात समझता था। वे दोनों कुछ देर इसी तरह एक दूसरे में खोए हुए बैठे रहे। पाँच पाँच सुनैना कार में बैठते ही अनय ने कार स्टार्ट की और सीधा हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी भगाने लगा। सुनैना के मन में अजीब और बुरे ख्याल आ रहे थे। अनय एकदम चुपचाप बैठा था। उसने अब तक सुनैना से कुछ नहीं बताया था। सुनैना और ज्यादा परेशान हो रही थी। प्लीज़ आप मुझे बताइए ना पूरी बात, आखिर क्या हुआ है आदित्य को, वो हॉस्पिटल में क्यों है? सुनैना से रहा नहीं गया तो उसने अनय की तरफ मुंह करके पूछा। पूरी बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसे कुछ तो हुआ है। मेरी एक फैमिली डॉक्टर ने वहां आदित्य को देखा और उन्होंने मुझे इस बात के लिए इन्फॉर्म किया। वे इस बात को लेकर कंसर्न थे कि आदित्य अपना इलाज करवाने अकेला आया है, उसके साथ कोई नहीं था। बाद में उसका असिस्टेंट वहां आया, अनय ने सुनैना के पूछने पर बताया। ओ माय गॉड, ऐसा क्या हो गया आदित्य को जो डॉक्टर ने ये बात बोली? वो अकेले क्यों नहीं जा सकता हॉस्पिटल? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन तुम इतने दिन से कहाँ थे और ऐसे एकदम अचानक से? सुनैना अनय के इस बहाने से थोड़ी खटकी तो उसने अनय से पूछा। बहुत लंबी कहानी है भाभी, और मुझे नहीं लगता अभी ये कहानी सुनाने का कोई सही वक्त है। पहले हमें आदित्य को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी भी देर हुई तो। अनय सुनैना की बात का जवाब देते हुए बोला। अनय की बात सुनकर सुनैना चुप हो गई। वो उससे आज पहली बार मिल रही थी। ज्यादा सवाल करना उसे भी ठीक नहीं लगा। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी और आदित्य से मिलना चाहती थी। सुनैना का दिल घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय ने ऐसा क्यों कहा कि अगर उन्हें देर हुई तो। इसके आगे वो जो कुछ भी कहना चाहता हो, सुनैना वो नहीं सुनना चाहती थी। वो आदित्य को लेकर कुछ भी बुरा इमेजिन नहीं करना चाहती थी। लेकिन आदित्य का बिना बताए गायब होना और अब उसके असिस्टेंट रवि का फोन भी नहीं लग रहा है, इसके अलावा अनय का वहां पर आना और फिर इस तरह से हॉस्पिटल जाना, ये सब कुछ किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। ये सब सोचते हुए वो खामोश नहीं रह सकी और पूछते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कम से कम ये तो बता दो कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, क्योंकि तुम तो आदित्य से कॉन्टैक्ट में भी नहीं थे ना? हाँ, हम कॉन्टैक्ट में नहीं थे पिछले कुछ सालों से, लेकिन जब से मैं शहर वापस आया हूँ तब से मैंने आदित्य पर नज़र रखी हुई है और कई बार उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। वो इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करता है और इस बारे में तो आपको पता ही होगा, अनय ने उसकी बात का जवाब दिया। इस बात पर सुनैना ने हाँ में सिर हिलाया। ये बात वो भी अच्छी तरह जानती थी कि आदित्य लोगों से मिलना जुलना, भीड़ में रहना पसंद नहीं करता। सुनैना के मन में और भी सवाल थे, लेकिन वो समझ रही थी कि सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर लगातार आदित्य और रवि का नंबर डायल किया, लेकिन आदित्य का फोन स्विच ऑफ था और रवि का फोन बिजी। पता नहीं लोग मोबाइल फोन और नंबर रखते ही क्यों हैं जब उन्हें किसी का कॉल रिसीव ही नहीं करना होता है, सुनैना निराश होकर बोली और उसने अपना मोबाइल फोन रख लिया। डोंट वरी, हम पहुंच गए, सामने दिख रही हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए अनय बोला। अनय की बात सुनकर सुनैना की बेचैनी बढ़ गई। वो घबराहट में अपने नाखून भी नोच रही थी और बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। अनय ने उसे ऐसा करते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड्स बाद उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर कार रोकी। वे दोनों कार से बाहर निकले। सुनैना हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था आगे कहाँ जाना है और किससे मिलना है। वो उम्मीद भरी निगाहों से अनय की तरफ देखने लगी। अनय ने उसे इस तरह देखते हुए कहा, चलिए भाभी, पहले हम दोनों अंदर जाते हैं। इतना बोलकर अनय आगे बढ़ा और सुनैना भी जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसके पीछे आते हुए सुनैना ने पूछा, लेकिन आदि को हुआ क्या है? कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक था और मेरे साथ भी। भाभी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम और दर्द छुपाने में माहिर है, शायद इसलिए आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, अनय ने सुनैना को बताया। उसकी ये बात सुनकर सुनैना आदित्य के साथ बिताए हुए पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने लगी, जब उसकी तबीयत खराब रहती थी और बार बार बोलने पर भी वो एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया था। सुनैना ये सब सोच ही रही थी कि उसे सामने से आता हुआ रवि दिखाई दिया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसने सुनैना को नहीं देखा, लेकिन सुनैना ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वो आदित्य के साथ ही आया होगा। सुनैना जल्दी से उसके पास पहुंची।
सुनैना कुछ बोल पाती इससे पहले ही रवि ने उसका नाम लेते हुए कहा, मैडम, आप यहाँ इस वक्त? ये बोलते हुए रवि के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने सुनैना के साथ अनय को वहां आते हुए देखा। उन दोनों को देखकर रवि समझ गया कि वे दोनों आदित्य के लिए ही आए होंगे, लेकिन फिर भी रवि ने कुछ नहीं बोला। क्रमशः